ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 2। मेरे पीछे दोहराइए।
एकदा तु रभसा पुरंजन पुरीं नृप रुरोधो भौम्य भोगाढ़्या जरत्पन्ना गपालिता। ता एकदा तु रभसा पुरंजन पुरीं नृप रुरोधु भौम्य भोगाढ़्यं जरत्पन्न गपालिता। त एकदा तु रभसा पुरंजन पुरीं नृप रुरोधु भौम भोगाढ़्या जरत्पन्न गपालिता।
शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए।
ते वे एकदा एक बार तो तब रभसा अत्यंत वेग से पुरंजन पुरीं पुरंजन की नगर को नृप हे राजा रुरोधो घेर लिया भौम भोगाढ़्यम इंद्रिय भोग से परिपूर्ण जरत बुढ़ा पन्नग सर्फ पालिताम सुरक्षित।
अनुवाद। एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया। यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्फ कर रहा था। तात्पर्य ध्यान पूर्वक सुनिए। इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर दिन पर दिन जर्जर होता है। अंत में शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना बूढ़े सर्प से की जाती है। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। जब शरीर के भीतर का प्राण क्षीण होने लगता है तो शरीर भी क्षीण हो जाता है। अर्थात जिनको बुढ़ापा आ गया है तो उसकी जो ब्रीथिंग है वो कम हो जाता है। एक मिनट में कितना बार हम लेते हैं तो उतना कम हो जाता है, तो शरीर भी क्षीण हो जाता है। इस समय मृत्यु के लक्षण चारों ओर मंडराने लगते हैं, अर्थात जमराज की भयानक दूत दिखने लगते हैं और घोर आक्रमण करने लगते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसे अवस्था प्राप्त होने की पूर्व ही मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेश का उपदेश करने के लिए आजीवन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। किंतु यदि मनुष्य घर पर रहता है और उसकी प्रिया पत्नी तथा पुत्र उनकी सेवा करते हैं तो इंद्रिय तृप्ति के कारण वो निश्चय ही क्षीण होता चला जाता है और जब अंत में मृत्यु आती है तो ऐसा मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति विहीन शरीर छोड़ जाता है। वर्तमान समय में तो बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता है, वो अपनी पत्नी बच्चे धन ऐश्वर्य घर इत्यादि से बंधा रहता है। इस प्रकार जीवन की अंत काल में मनुष्य को चिंता रहती है कि उनकी पत्नी की रक्षा कैसे होगी और वह परिवार को कैसे संभालेगी। इस प्रकार सामान्यतः मृत्यु की पूर्व लोग अपनी पत्नी के विषय में सोचते हैं। भगवत गीता 8:6 के अनुसार जन जन व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तं तमेव तिक्वन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मरते समय मनुष्य जिसी किसी स्थिति के विषय में स्मरण करता है उस स्थिति को वो निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जीवन के अंत काल में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन में उसने क्या क्या किया है और इस तरह जीवन के अंत में उनके जो भी विचार तथा इच्छाएं होती हैं उसी के अनुसार उसे दूसरे शरीर बाद देहांतर प्राप्त होता है। जो जीवन भर घर में ही लिप्त रहता है उसके लिए स्वाभाविक है कि अंत काल में अपनी प्राण प्रिय पत्नी के विषय में सोचे, अतः अगले जीवन में उसे स्त्री की शरीर प्राप्त होता है और साथ में उसे पुण्य या पाप कर्म का फल भी मिलता है। इस अध्याय में राजा पुरंजन द्वारा स्त्री देह प्राप्ति के विषय में विस्तार से बताया जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान तमिरांधस्य ज्ञानांजन सलकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीजुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांसं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखानितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भूतैर्महद्भीयैमा पुरा विभो निर्मायसे तेजदमो सपुरुष। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं स्वलङ्कृशिष्टं भगवान् वचंसि मे। ज्वन्ता प्रविष्टा मम वाच इमं प्रसप्ता सञ्जीवयति अखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यस्सहस्तचरणश्रवणात्वकादिन् प्राणान् नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
हरे कृष्ण। तो सभी वैष्णव के चरण कमल में प्रणति करते हुए कुछ भागवतम के शब्दों को यथारूप दोहराने की दुस्साहस कर रहा हूँ। बड़े बड़े वैष्णव हैं और विशेष करके यहाँ वृंदावन के भक्त हैं, अनुराग के भक्त हैं। और ये जो प्रसंग है जो कि लगता है एकदम शुष्क दर्शन स्वरूप है और हम नित्यम भागवतम सेवया के रूप में इसको सेवन करते हैं कुछ दिनों से, परंतु प्रभुपाद ने ये श्रीमद् भागवतों को आस्था रख करके पाश्चात्य जगत गए थे कि यदि लोग इस भागवतम के संदेश को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से कि रज और तमगुण में बंधे हुए व्यक्ति भी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। तो यहाँ पर निवास करने वाले वृंदावन वासियों की स्थिति बहुत उन्नत है, क्योंकि ये संदेश को सुनकर के उन्होंने अपने नित्य धाम वृंदावन में रहने के लिए योजना बना लिए हैं। तो हमारे पास तो ये सौभाग्य नहीं है, परंतु कभी कभी आते हैं आप लोग के संग प्राप्त करने के लिए। तो ये जो पुरंजन की जो प्रसंग है, तो आज तत्ववेत्ता प्रभु परिक्रमा के समय पूछ रहे थे क्यों विस्तार से हैं ये सब चीज। तो मैं उनको ये संक्षेप में बतलाया हूँ कि वास्तविक ये संसार जो है कितनी अज्ञानता से घिरी हुई है, एक जंगल है, और हम सब उसी जंगल में हम सब रास्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। और केवल ये नहीं है, पुरंजन प्रसंग आगे भी पांचवा स्कंद में फिर आएगा, जड़भरत महाराज की भवाट भी बनना। तो हमारे साधकों के लिए व भक्तों के लिए ये भागवतम की जो शब्द हैं बहुत आवश्यक हैं। हम जो भक्ति के नाम पर भावुकता को पैदा करते हैं, वास्तव में भक्ति भावुकता नहीं है। भक्ति तो एक साइंस है, विज्ञान है, उसको भाव कहते हैं, भावुकता नहीं। और जब तक इस संदेश को हम यथारूप नहीं समझेंगे, तब तक हमारी भक्ति नैष्टिक नहीं हो सकता है, भाव दशा में नहीं पहुंच सकती है। इसलिए हमारे सामने एक दर्पण के समान है ये भागवतम के शब्द। आज संसार में सब बहुत सारे रोग बढ़ रहा है, परंतु इन रोगों को इलाज करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए बहुत सारी चिकित्सालय हॉस्पिटल खुल गया है, परंतु रोग ठीक नहीं हो रहा है, रोग और बढ़ते जा रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपनी कंपनी को बंद कर दिए, मेडिसिन कंपनी को, नहीं ये दवाई से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए असली दवाई लेके गए वहां उपचार करने के लिए। ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम असली दवाई है जो प्रभुपाद का परपट है। इसलिए भक्तों को बहुत इसलिए गंभीरता से इन बातों को विचार करना चाहिए। विचारणम तत्सुणम विपठनम विचारणेक परो भक्त्या विमुच्यत परः, इन शब्दों को विचार करना चाहिए। तो ये जो पुरंजन की कथा है, तो डायरेक्ट वक्ता तो नारद जी हैं, एक भोगी राजा पुरंजन को सुना रहे हैं, प्राचीन वैरी को सुना रहे हैं, लेकिन एक कथा के माध्यम से इसको एकांकिका बोलते हैं, दृष्टांत के द्वारा समझाना। और ये चर्चा हो रही है किसके बीच में, किन दोनों श्रोता और वक्ता हैं, कौन है ये प्रसंग की, ये तो है डायरेक्ट, उसके पहले कहां से शुरू हुआ था ये प्रसंग, हाँ आप लोग सो ध्यान देकर कांटवाइज गए हैं ना, नहीं तीसरा स्कंद से शुरू हुआ था, किसकी प्रसंग, गुड, कौन बताए, विदुर और मैत्र, पहले विदुर और उद्धव के साथ था, उसके बाद पंचमाध्याय से। तो जितनी सारी प्रश्न विदुर जी मैत्र जी से किए थे, हाँ इस प्रश्न के उत्तर इस प्रकार दे रहे हैं, कौन, मैत्र जी। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है, परंतु इस प्रकार एक एक प्रसंग ऐसे आकर्षक था, विदुर जी सुनते ही, आपको 31वां अध्याय में मिलेगा इसके सार, एकांत भक्ति गोविंदे, विदुर जी की मन चित भगवान की, भगवान गोविंद के चरण कमल में लग गए। और फिर आकर की उन्होंने उस बूढ़े अंधे धृतराष्ट्र को इस उपदेश दिया। यही था कि हम कैसे संसार की भोग से अंधे हो चुके हैं। भौम भोगाढ़ जरत्पन्ना, जो पुरंजन की एक स्टोरी के रूप में सुना रहे हैं, ये कैसे हो गया था, भोग भोगते भोगते बुढ़ा हो चुका था। और प्रभुपाद लिखते हैं कि जो जवानी में जितनी ही मौथिन सुख का आनंद उठाता है, तो बुढ़ापा में उनको उतने ही रोग की कष्ट मिलता है। अर्थात जो जितने ही भौतिक भोग में रचे बते रहता है, उसको रोग और बुढ़ापा, जरत फन्ना, जराग्रस्त हो जाता है। वास्तविक हम कोई भोग नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोग लेता है। भोग के द्वारा हम भोगे जाते हैं और भोग के कारण ही ये संसार के भोग रोग भव रोग की उत्पन्न। जजाति महाराज देखिए, हाँ ससुर जी ने बनाए रूल्स, कजेती तुमको विवाह करना है, ध्यान रखो। शर्मिष्ठा के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, वो तो दासी बन के जाएगी। हाँ शर्मिष्ठा और दूसरे कौन था उनकी पत्नी, देवजानी, देवजानी उनकी पुत्री थी ना शुक्राचार्य की, शर्मिष्ठा उनकी दासी। शर्मिष्ठा के साथ भोग नहीं, दुष्परवा की पुत्री है। लेकिन क्या करें, काम इतने प्रबल हैं। हालांकि विधि की विधान ऐसे रची गई थी कि एक क्षत्रिय का विवाह एक ब्राह्मण कन्या से हुई, परंतु भोग देखिए कितनी प्रबल है। इन नियम को उल्लंघन किए शर्मिष्ठा ने याचना की, दासी से भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं और मैं राज कन्या हूं, और क्षत्रिय का भी धर्म है, किसी स्त्री यदि किसी क्षत्रिय से कुछ याचना करती हैं उसकी पूर्ति करना ही उसकी धर्म है क्षत्रिय की। और जजाति महाराज धर्म की नियम को निभाए, उनसे तीन पुत्र उत्पन्न किए। परंतु जब देवजानी ने अपने पिता को मेल किया, बाजो भी है, उनको इन्फॉर्मेशन दी कि देखिए आपकी बना हुआ नियम को तोड़ दिए, ये कामुक हैं, और घर से निकल पड़ी देवजानी ने, घर से निकल पड़ी, मैं रहूंगी नहीं। और वो आम जजाति महाराज इतनी स्त्री प्रेमी थे, स्त्री के बस में थे, उनके हाथ पैर पकड़ करके मनाने लगे, महारानी आपके चरण पकड़ता हूँ, मान जाओ गलती हो गया, आगे से नहीं हो गई ऐसे, बहुत प्रकार मनाने लगे। परंतु क्या करें, देवजन ने एक भी बात अपने पति की बात को नहीं सुनी, और पिता के पास सूचना देते ही पिताजी एकदम गुस्सा होकर के बस जनेऊ निकाले, सांप दे दिए, तुम काम की बस में होना बुढ़ापा हो जाए, तुम्हारा शरीर जिन्ना जरा हो जाए। भोग की परिणाम देखिए, जराग्रस्त हो गया। कहा कि ससुर जी नुकसान तो मेरे नहीं हुआ, आपकी बेटी की हुआ, बुढ़ापा आ गया, मेरी मन से तो भोग की वासना मिटा नहीं, और आपकी पुत्री के साथ मैं कैसे भोग करूं। शुक्राचार्य भी सोचने लगा, अच्छा सच बात तो यही है, मैं तो क्रोध के आवेश में आ गया। कह चलो तुमको यदि भोग करने की इच्छा है, तुम्हारे भोग तृप्ति नहीं हुआ है, जाओ तुम्हारी पांच बेटा है ना, पांच बेटा में से कोई यदि तुम्हारे बुढ़ापा लेकर के जवानी की दे देना, तुम फिर भोग कर सकते। गए बेटे से एक एक करके, बेटे से जाचना की, कोई नहीं दिया, आखिर में पुरु ने एग्री हो गए, उनको पुर दे दिए, ये पुरंजन पुर है ना, वो पुर में रहने के लिए बाप की बुढ़ापा लेकर के जवानी दे दी, लेकिन ये पुर से नहीं निकल पाए, ये हस्तिनापुर है, ये पुरु वंश चला आगे। परंतु जदू ने नहीं दिए, जदू धर्मशील थे, नितराम धर्म सम्मत दशम स्कंध पहले, कहते जदू वंश जो है धर्म में उनके मन लगता है, जदू ने जान लिए थे, जदू महाराज नहीं, कृष्ण मरी वंश में आने वाले हैं, इसलिए मैं भोग को नहीं लूंगा। अतः भौम भोगाढ़ ये भौतिक संसार के सार्वभौम भोग भी मिल जाए परंतु मन तृप्त नहीं होता है। उन्होंने हजार साल तक जवानी को प्राप्त करके भोग करते रहे। जजाति महाराज आखिर में अपने पत्नी को ये कथा सुनाते हुए कहते हैं, भोग मिटा नहीं, न काम्य काम उपभोगे न सम्यते हविषा कृष्ण बत्मैव भूयैव हि वर्धते। अरे अग्नि में घी डालने से क्या अग्नि बुझ जाती है? पानी चाहिए, लेकिन लोग 10 रुपए का पानी खरीद करना नहीं चाहते हैं, 600 रुपए का घी खरीद करके डालना चाहते हैं अग्नि में, कैसे समान होगा? फिर कहे नहीं, वही जरा अवस्था रहे, भोग की अवस्था, इसे जरा दे दिया। उसी प्रकार दक्ष प्रजापति की जो 60 कन्याएं थी, उन कन्या में से 27 कन्या की विवाह सोम से हुआ था। सोम महाराज उन 27 कन्या के साथ बहुत मान खोल करके काम उपभोग किए, परंतु एक पत्नी जो रोहिणी थी उन 27 कन्या में से, उनके प्रति उनके ज्यादा लगाव थे और इसी कारण 26 कन्या ने अपने पिता के पास कंप्लेन लेटर लिख दिए और दक्ष प्रजापति दक्ष महाराज ने सोम को साप दे दिए, जाओ तुमके जख्मा रोग हो जाए टीवी। और देखो आज भी आसमान में सोम जी अपने रोशनी देकर के यह दिखाना चाह रहे, देखो रोशनी तो दुनिया को मैं दिखाता हूं परंतु मुझे टीपी हो गया है, जख्मा रोग, अंधकार आ जाता है, अमावस्या आ जाती है, दिन पर दिन मेरी जवानी क्षय हो जाता है, पूर्णिमा की फात टीपी रोग, मैं टीवी नहीं देख सकता हूं। लेकिन लोग दिन में काम करते हैं, रात में टीवी देखते हैं, की दशा है, भोग की दशा देखिए, रोग जरा। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। जब विदुर जी आकर के धृतराष्ट्र महाराज को विदुर जी आकर धृतराष्ट्र महाराज की इस हाल को देखे, इस दशा को देखे, कहीं सोचो देखो ये बुढ़ा की बुद्धि इतनी मर गया है, 100 पुत्र की मौत होने की बाद भी ये भीम के हाथ में दिया हुआ रोटी को कुत्ते की तरह खा रहे हैं, धिक्कार है, कैसी संसार है। सोच रहे हैं काल कर्म गुणाधीन करके, महाराज जो शरीर से तुम भोग कर रहे हो ये काल के अधीन है, अभी बुढ़ापा आ गया ना, फिर भी कुछ सोचे नहीं, कुछ विचार नहीं कर रहे हो, तुम जो कर्म किए थे इस कर्म की दशा को तो देख लिए ना, 100 पुत्रों का मौत हो गया तुम्हारे सामने, फिर भी मोह नहीं मिटा। अरे गुणाधीन, तुम इतनी धृतराष्ट्र बनकर के अपने राष्ट्र को अपने हाथ में रखने के लिए कितने कितने कूटनीति राजनीति किए, फिर भी तुम्हारे हाथ में सिंहासन नहीं आया, फिर भी तुम्हारा मोह नहीं मिटा। काल कर्म गुणाधीना देहयं पंचभौतिकम्। देखो ये संसार को आंख खोल करके अंधा तो हो गए, फिर भी ज्ञान चक्षु से तो देखो, 100 पुत्र की मौत होने पर भी तुम रोटी खा रहे हो, सोच रहे हो मेरी पत्नी गांधारी है, मेरी सुरक्षा देगी। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे आज पूरी संसार में 99% लोग धृतराष्ट्र की तरह हैं, और उन धृतराष्ट्रों के लिए ऐसे विदुर जी की आवश्यकता है, नहीं तो हम बनम गत्वाम जत हरि आश्रय हित्वात्म पात गृह अंध गोप, ये उपदेश सबको शोभनीय नहीं लगता है, क्योंकि सब लोग हिरण्यकशिपु तरफ हो गए हैं धन और भोग। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वर्तमान समय में तो बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता, वो अपनी पत्नी बच्चों धन ऐश्वर्य घर इत्यादि से बंधा रहता है। कौन बांधता है? किसी को कोई नहीं बांधता है, बंधन अपनी मोह ही बांधता है। ताबाद रागा दयस्ते ना ताबाद कारा गरम गृहम ताबाद मोहं घ्री निगिडम जाबत कृष्णा नते जना। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर ही कह रहे हैं, प्रभु इस संसार में तब तक लोग इस बेड़ी में बंधे रहते हैं। कौन सी बेड़ी है? मोहांग्री निगिडम, मोहरूपी बेड़िया। अरे बेड़िया कैसे आ गया है? कहते देखो पहले तो चोरी किए हो, और चोर को अच्छा आसन नहीं मिलता है। महाराज आइए बैठिए, माला पहनिए, हमारे गोविंदा से कुछ प्रसाद लाइए, लाए हैं तो खाइए, स्वीकार कीजिए। उनकी सत्कार होती है, कहां पर होती है? कारागार में होता है, बेड़ियों से होती है, पिटाई से होती है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार में सब लोग चोर हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं सस्तेन एव स इष्टान भोगान हिबो देवा दस्यन्ति यज्ञ भाविते ते दत्तान प्रदायेभ्यो जो भुंते तेना एव स। चोर है, चोर खा पी कर मजा लेते हैं, सब मजा मारते हैं, मजा मा हाँ सजा नहीं समझते हैं ये, कहते मजा मा ये कम छो मजा मा। ये चोरों की मजा है, सूखा रोटी खाते हैं स्तेना, और फिर दूसरे साथ क्या है? पापी हैं। जज्ञाशिष्ट सिना संत मुच्यंति सर्वकृ में से भुंजनते ते तोघं पापा भुंजनते ते अघं पापा जय पच्यंति आत्मकारणा। ये भोम भोगाड़ को, ये संसार के भोग को भोग करने की प्रबल इच्छाएं उनको चोर और पापी बनाता है। और प्रभुपाद कहते हैं जो लोग चोर हैं और पापी हैं वो कैसे सुखी रह सकते हैं? इसलिए उनको अच्छी तरह से सजा मिलता है, कहां पर? कारागार में। कहते ताबात कारा गृहम गृहम, घर को उन्होंने कारागार जेल बनाए हैं। अरे भाई क्यों? इसलिए रागादय आसक्ति है पुत्र में, पत्नी में, धन में, अपने घर के साथ समान में, अपने पोजीशन में। इसलिए विदुर जी कहे मूर्ख अंधे अब तक भी तुम्हारा होश नहीं आया, निकलो जल्दी। तो नाराज जी भी इस प्रकार उपदेश दे रहे कि एकदा इस प्रकार 100 साल के जो अवसर मिला था ते एकदा हाँ उस राजा को हाँ कैसे हुआ ना जरा जरत वो जरा हो गया था, बुढ़ापा आ गया था भोग भोगते हुए। और ये जो हाँ जवन राजा का जो सैनिक थे उन्होंने क्या किए? रभसा बहुत जोर से बल पूर्वक हाँ देर नहीं किया, हाँ थोड़ा से समय देना चाहिए, नहीं बुढ़ापा आ गया मतलब हाँ अपने जो हार्ट बीटिंग है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, पसीना आ जाएगा है ना, ब्रीथिंग बढ़ता है। ये दशा को देखिए हाँ दुख दोषानुदर्शनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। चश्मा लगाने से देख नहीं सकते हैं ये दुख को, अनुदर्शनम चाहिए, सुनिए। कथा ही दर्शन दे सकता है, इसको कहते फिलोसफी। ये तत्व ही दर्शन दे सकता है। रभसा, और कैसे? रुरुधु, ऐसे नहीं बहुत सम्मान के साथ आइए, चलिए आप तो गलती किए हैं, थोड़ा सा बैठिए हम विचार करेंगे, नहीं, तुरंत घर लिए,
बलपूर्वक और जोर से रभसा रुरुधु।
अरे अरे कैसे घर लिए, ये तो बहुत धनी था, भोगाढ़ भौम भोगाढ़, इनके पास नौकर चाकर सैनिक भी थे, ये कैसे उनको जीत लिए, ऐसे कैसे घर लिए, हाँ घर पर कैसे रेड क्रॉस लगा दिए, छापा मार दिए, कैसे हुआ बात? कहते जरत पन्नगा, बुढ़ा हो गया था, क्या कर सकता है, इसलिए सैनिक भी सब चुपचाप रहे, कोई कुछ नहीं किया। पन्नगर बहुत चोट मारता है, सर्प बहुत जहर होता है, फण उठा देता है, बहुत अच्छा तुलना है। देखिए लोगों के पास धन होता है, सर उठा करके सीना फुला करके चलते हैं, और बुढ़ा पाने के बाद कितने धन हो, कितने मान हो, कितने संपत्ति हो, कितने बैंक बैलेंस हो, गाड़ियां हो, नौकरियां हो, लेकिन कमर झुक जाएगा, लाठी पकड़ना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है, कमर में लगेगा पट्टियां। दशा पन्नगा, अब जानते हैं अधिकांश सर्प जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या करते हैं, वो अपने चमड़े को छोड़ देते हैं, ऊपर वाला है ना, चमड़ा को छोड़ते हैं। तो उसी प्रकार बुढ़ापा आ गया मतलब अभी छोड़ने की विचार करना चाहिए, जरा आने की पहले उस जरा को सोच करके घर छोड़ दीजिए। पांडव लोग ने कितने विचारवान थे, कुंती और धृतराष्ट्र के विचार आसमान और जमीन का अंतर है। मामका कहते हुए धृतराष्ट्र महाराज, मामका चल गए परंतु ममता नहीं छोड़े, सौ सौ पुत्रों का मौत हो गया फिर ममता नहीं गया। अरे ममता का एक लिमिट है, उसमें समता करना सीखो पहले। परंतु कुंती महारानी इतने कष्ट झेलते हुए भी उन्होंने कहा नहीं, इन्हीं पुत्रों के प्रति मेरे ममता को काट दीजिए, स्नेह पासंग इमंग छिंदी दृढ़ वृष्णी सु पांडुसु तो ये मैं अनन्य, मेरी अनन्य भक्ति आप पर बढ़ते रहे। ये कुंती महारानी की दशा। परंतु हम लोग ये सोचते हैं कि प्रभुपाद तो ऐसे नहीं कहे हैं, प्रभुपाद तो कहे हैं गृहे थाक बने थाक सदा हरि भले डाको, कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार। हम तो कृष्ण के संसार बना है, परंतु क्या पांडव का संसार कृष्ण संसार नहीं है? महारानी कुंती क्यों इस प्रकार भगवान से जाचना करे, साक्षात मांग रही है, तो ही मैं अनन्य विषया मतीर मधु पति सकृत। एक बार ऐसे ही मन लग जाए और देखिए उनके साथ कैसे प्रीति के व्यवहार किए भगवान। जो संसार के भोग से जितने डिटैच रहता है कृष्ण के प्रति वो इतने आसक्त हो सकता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसप्यासम परम दृष्ट्वा, और वो व्यक्ति ही इस विषय से विमुख हो सकता है जिनको भगवत प्रेम बा भगवत रस में टेस्ट मिल गया है। रसमालयम मोहरो रसिका भूमि भावुका, कौन इस रस को पीता है? टाइम देखते हैं, प्रसाद के समय है, घर के बहुत सारे काम है, भूख प्यास पर विजय प्राप्त करने के बाद इस रस को पिए परीक्षित महाराज, ये योग्यता नहीं है सबकी। एक घंटा क्लास से हम सबको रस मिल जाएगा, परंतु ऐसे प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया सेवन करते करते एक दिन जो पुरंजन ने अभी इस पुरी को घर लिया है उसके साथ लड़ने की हमारी हिम्मत हो सकती है, शक्ति आ सकती है। लेकिन यदि हम अधिक से अधिक हाँ परिवार के प्रति आसक्ति बढ़ाएं तो इसी दशा होगी। हाँ आत्मा सन्यासु सत्सु, हाँ सुखदेव गोस्वामी कथा इससे प्रारंभ करते हैं। लोग बहुत सारी दुनियादारी की कथा सुनते हैं, नृणाम संति सहस्रस त्रतव्यादिनि राजेंद्र अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिनाम। ऐसे गृह में लोग हैं, वृंदावन में आने के बाद भी टीवी लगा देते, नहीं हम थोड़ा सा न्यूज देखेंगे। ये संसार की न्यूज फिर यहां पर वृंदावन में भी चलता है, कितनी दुर्भागा भागा है। अरे कृष्ण की मैसेज इतनी ब्रॉड है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे एक मिनट में, हाँ ये जितनी सब छापाखाना है यदि लगा दिया जाए एक मिनट का जो गोलोक वृंदावन में जितनी सब लीला होती है वो छपाने के लिए पेपर सट पड़े। परंतु ये भगा लोग उस दुनियादारी की न्यूज देखते हैं, क्या कहा जाए, यही तो देखिए मोह कैसे अपने को यहां पर वृंदावन में लाने पर भी हम अपने को बेड़िए में बांध के रखते हैं। वसुदेव तो कृष्ण को लेकर के बेड़िया उनके पैर से कट गया, हाथ से पैर से बेड़िया और हाथ कड़िया खुल गई, और हम आ रहे हैं कृष्ण संदेश को छोड़कर के संसार के संदेश को लेकर के हाथ कड़िया फिर पहनने के लिए। निर्बंध कृष्ण संबंध ये है जीवन है। और प्रभुपाद ये सातवां स्कंध की तात्पर्य में जो प्रह्लाद जी की उक्ति है उसको प्रस्तुत करते हैं कि संसार के मोह कैसे हैं। प्रह्लाद जी अपने सहपाठियों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, विशेष करके जो कहते ना गृह अंध कुप, जो आंख को अंधा करने वाला क्या है, वो कह रहे कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगं रहस्यम रुचिरान समंत्रान श्रुहुत्सु तत्स्नेहं स्थिता शिशूनां कलाक्षराणां अनुरक्त चित्तः पुंसां स्मरतां दुहितृं हृदर्ज्यः भातृं श्वशुर्वं पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञं रुपरिच्छदांसः भृतिस्सकुल्या प्रसुभूत्य वर्गान् तेजन कोसान कृतिवेहमान कर्माणि लोभाद वितृप्त काम औपस्त जीवं बहुमन्यमान कथम विरज्जेत दुरंत मोह। कदी इस मोह को इतने दुरंत त्याग करना इतने कठिन है, कैसे त्याग कर सकता है, क्या है मोह है। कते कथम प्रियायम अनुकंपितायम संगं रहस्यम रुचिरान समंत्रान, पत्नी की जो मधुर भाषण है, मीठी मीठी बोली है, उनकी मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन ज्वालामुखी आखिर में लगेगा, पहले तो चंद्रमुखी है। इतनी मधुर भाषण है, उनकी कोमल स्पर्श है, भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहला और जिनकी हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती हैं, वो किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती हैं, भला ऐसा कौन होगा जो ऐसे प्रिय तथा स्नेहली पत्नी की संगति का त्याग करता है। छोटे छोटे बालक तोतली तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है, वही नित्यम भागवतम सेवाया हो जाता है। ये शब्द जो है ना उनको लगता है ये भागवत सेवा। बच्चों के एग्जाम चल रहा है, क्या करे, जिम्मेदारी है, कहाँ टाइम मिलेगा भागवतम कथा सुनने के। और उनके पिता सदैव उनकी मधुर शब्द के विषय में सोचते रहते हैं, वो भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्धा माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियों पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होती हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है, लड़की पिता का प्यारा होता है और लड़का माँ की। और अपनी ससुराल में रहती हुई भी वो उनके मन में बसी रहती हैं, भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज समाज होते हैं और अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं, भला ऐसे आराम को कौन छोड़ सकता है। आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह हैं जो अपने चार ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है। रेशमी कीट को देखे हैं ना, अपने मुंह के लार से वो अपने को बंदी बनाता है। अपने आसक्ति से हर व्यक्ति यहाँ कारागार में, हाँ कामागार को कारागार बना दिया। धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ हो रहता है। केवल दो इंद्रिया, कामेंद्रिया और तथा जीवा की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बन जाता है, कोई इनसे कैसे बच सकता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, गृहस्थ में पहला आकर्षण सुंदरी तथा मोहिनी पत्नी है, जो गृहस्थी के आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। मनुष्य को अपनी पत्नी का आनंद तो दो प्रमुख इंद्रियों से मिलता है, जीव तथा कामेंद्रिय से। स्त्री अत्यंत मीठी स्वर में बोलती है, यह निश्चय ही आकर्षक है। फिर वह सुखद भोजन तैयार करती है जिससे जीव तृप्त होती है, और जीव तृप्त हो जाने पर जिनमें काम इंद्रिया विशेष से कुबल प्राप्त होता है, इस प्रकार पत्नी मैथुन में आनंद प्रदान करती है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है विषय जीवन, जन मैथुन आदि गृह में सुखम तुच्छम, यह सब जीव द्वारा प्रोत्साहित है। फिर संतानें उत्पन्न होती है, बच्चा अपनी तोतरी बोली से आनंद प्रदान करता है, और जब लड़के लड़कियां बड़े हो जाती हैं तो मनुष्य उनकी शिक्षा तथा विवाह में व्यस्त हो जाता है। फिर अपने माता पिता भी होते हैं जिनको देख रेख करनी होती है, और मनुष्य सामाजिक वातावरण में तथा अपने भाई बहन को प्रसन्न करने में भी लग जाता है। वो घरेलू काम काज में इस तरह व्यस्त होता जाता है कि उन्हें छोड़ पाना असंभव हो जाता है। इस प्रकार गृहस्थी गृह अंधकूपम अर्थात वह अंधा कुआ बन जाता है, जिससे मनुष्य गिर जाता है, उठने के लिए उनको रास्ता नहीं मिलती है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसमें से निकल पाना तब तक मुश्किल रहता है जब तक कोई बलवान मनुष्य अर्थात गुरु उनकी सहायता न कर ले। तस्मात गुरु प्रपद्यन्ते, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक उपदेश की रस्सी से पतित मनुष्य की सहायता करता है। वो रस्सी क्या है, ये जो शब्द है प्रभुपाद की, जो परफट है गुरु की, जो उपदेश है, ये रस्सी के समान काम करता है। और यदि साधक इसको समझ करके पकड़ने के प्रयत्न करे तब फिर ऊपर उठ पाएगा, क्योंकि गुरु ऊपर है उद्धार करने के लिए। पतित मनुष्य को चाहे कि इस रस्सी का सहारा ले, तब गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उठे उसे अंधकूप से बाहर निकाल लें। गॉड हेल्प देम, दोज हेल्प्स देमसेल्फ।